ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को मुरली के माध्यम से हर रोज नए नए रत्न देते हैं, जिनको जीवन में धारण करके हम अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं, महान बनाते हैं। तो बाबा की इन शिक्षाओं को जीवन में उतारना, उसको कहेंगे ज्ञान युक्त जीवन। और जो ज्ञान युक्त जीवन है, उसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे धर्म युक्त जीवन। जैसे प्यारे बाबा ने हमें बताया कि सतयुग में देवताओं का जो जीवन होगा वो धर्म युक्त होगा, और बाबा ने ये भी कहा है कि श्री कृष्ण सबसे बड़ा धर्मात्मा है, क्योंकि धर्म के जितने भी लक्षण हैं, जितने भी गुण हैं, वो सब उस आत्मा में हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि वहाँ का जो राजा होगा, अर्थात श्री कृष्ण ही जब नारायण के रूप में गद्दी पर बैठेगा, तो वो ऐसा राजा होगा जिसके जीवन में कर्म भी होगा और धर्म भी होगा, दोनों चीजों का संतुलन होगा। ऐसा नहीं कि सतयुग के देवता कर्म नहीं करेंगे, कर्म भी करेंगे लेकिन साथ में धर्म भी होगा। और इसलिए बाबा ने कहा कि वो दुनिया एक संपूर्ण दुनिया है, जिसमें सुख शांति समृद्धि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे सतयुग का समय बीतेगा, तो कर्म तो जीवन में रहेगा लेकिन धर्म की कलाएं घटती जाएंगी। और इसी के कारण कहा गया कि उतरती कला शुरू हो जाएगी, और ये धर्म की कलाएं घटते घटते, और जब त्रेता का अंत आएगा तो धर्म जीवन से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और फिर द्वापर युग में धर्म अलग हो जाएगा और कर्म अलग हो जाएगा। जब व्यक्ति कर्म करेगा तो धर्म का ध्यान नहीं रखेगा, और जब व्यक्ति धर्म करेगा तो केवल धर्म की बातें कहेगा, उस समय कर्म का ध्यान नहीं रखेगा, दोनों शाखाएं अलग अलग हो जाएंगी। इसका परिणाम ये हुआ कि कर्म के बिना तो जीवन नहीं चलता, तो मनुष्य के जीवन में कर्म तो बढ़ता चला गया। क्योंकि बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि सांस लेना भी कर्म है, पलक झपकना भी कर्म है, विचार पैदा करना भी कर्म है। अगर कोई ऋषि मुनि सन्यासी जंगल में बैठा है और वहां बैठ के शास्त्र पढ़ रहा है, वो भी कर्म है। श्लोक लिख रहा है, वो भी कर्म है। प्रवचन कर रहा है, वो भी कर्म है। अर्थात कर्म इंद्रियों को यूज करना ही कर्म है। और दूसरी तरफ बाबा ने धर्म की परिभाषा बताई कि धर्म का मतलब है धारणा। तो जिन मूल्यों को जीवन में धारण करना है वो सब हमारा धर्म है। जैसे बाबा ने कहा आत्मा के मूल सात गुण हैं, वो आत्मा का धर्म है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ये आत्मा का धर्म है। और इन मूल्यों को आपस में मिला दें तो और कई मूल्य पैदा हो जाते हैं, वो भी आत्मा का धर्म है। तो कर्म करते समय आत्मा के ये जो गुण हैं, ये जो मूल्य हैं, ये उससे छूटे नहीं। कर्म करते हुए भी वो इन मूल्यों को पकड़ करके रखे, इसको कहते हैं धर्म और कर्म, दोनों का आपस में संतुलन। तो जो ऐसा कर्म होता है उसको करते हुए भी व्यक्ति उसमें बंधता नहीं है, क्योंकि धर्म साथ में है। कर्म बंधन नहीं आता, कर्म कर करके फिर व्यक्ति को पश्चाताप नहीं होता, कर्म करने के बाद थकान नहीं होती, कर्म करने के बाद कर्म के जो हिसाब किताब बनते हैं वो नहीं बनते। लेकिन जब धर्म को छोड़कर के कर्म किया जाता है तो वो कर्म मनुष्य को बांध लेता है, कर्म बंधन बन जाता है, कर्म में निंदा स्तुति हानि लाभ दुख सुख सब आता। तो बाद में लोगों ने देखा कि कर्म के बिना तो काम नहीं चलता, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कर्म ही पूजा। लेकिन आज की दुनिया में कर्म पूजा नहीं है, कर्म तो वास्तव में युद्ध का मैदान है। लेकिन वो कर्म पूजा है जो धर्म युक्त है, जिसके साथ धर्म है। इसलिए कहते हैं युवा अवस्था व्यक्ति की सबसे ज्यादा कर्मशील अवस्था होती है। तो युवा अवस्था में व्यक्ति को सबसे ज्यादा धर्मशील भी होना चाहिए। लेकिन आज उल्टा है, वो कहता है कि मैं अभी तो कर्मशील हूं और बुढ़ापे में धर्मशील बन जाऊंगा, अर्थात जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब ज्ञान सीखूंगा। तो इसका जो परिणाम है वो आप देखिए कैसा निकल रहा है। अब जैसे बाबा ने हमें सिखाया कि हमारे पास कितना भी हुनर हो, कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी स्किल्स हो, लेकिन उन सब का उपयोग करते समय हम मर्यादा का, नम्रता का, प्रेम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चलाने में बहुत एक्सपर्ट है और वो कैसी भी भीड़ में से गाड़ी निकाल लेता है, तो ये उसका कर्म है, कर्म में वो एक्सपर्ट है, अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कि जब वो गाड़ी चला रहा है रोड के ऊपर और सामने से कोई एक और व्यक्ति भी आ गया गाड़ी वाला, अब ये गाड़ी चलाने में तो बहुत एक्सपर्ट है लेकिन अब जीवन में धैर्य भी नहीं है, नम्रता भी नहीं है, झुकने का संस्कार भी नहीं है, तो सामने वाले को कहेगा तू हटा मेरे को निकलने दे। मान लो सामने वाला बुजुर्ग व्यक्ति है तो भी मान सम्मान का ख्याल नहीं रखेगा, नहीं नहीं तुम हटो, तुम गलत आए हो, तुमको ये करना चाहिए, मैं क्यों हटूं, मैं तो ठीक हूं। तो कर्म में तो एक्सपर्ट है वो, लेकिन कर्म के साथ धर्म नहीं। अब तू मैं काफी समय लग गया, हो सकता है दोनों गाड़ी से बाहर निकल करके एक दो का हाथ भी पकड़ लें, गर्दन भी पकड़ लें, यहाँ तक भी बात पहुंच जाती है और एक के पीछे भी 100 गाड़ियां आ गई, दूसरे के पीछे भी 100 गाड़ियां आ गई हैं। अब उनके उनमें कोई बीमार भी है, कोई स्कूल जाने वाला है, कोई ट्रेन पकड़ने वाला है, किसी का इंटरव्यू है, किसी की परीक्षा भवन में परीक्षा है, लेकिन एक व्यक्ति के ईगो के कारण अब क्या होगा, कई लोगों का समय बर्बाद, संकल्प बर्बाद। तो एक्सपर्ट होने के साथ साथ अगर उसके जीवन में ये धर्म होता, अर्थात दिव्य गुण होते, नम्रता होती, समाधानकारी दृष्टिकोण होता, धैर्य होता, सामने वाले का सम्मान होता, आगे पीछे वालों के समय की कदर होती, तो ये व्यक्ति झुकता, हटता, कुछ ना कुछ समाधान खोजता। आज हम देखते हैं कि दुनिया में काम तो खूब हो रही है, व्यक्ति भाग रहा है, सुबह उठते ही भागना शुरू करता है, रात तक भागता है, लेकिन उसका जमा खाता बिल्कुल नहीं बनता। हर रोज कर्म करके उसका जमा का खाता घटता जा रहा है, जिसको बाबा कहते हैं पाप का घड़ा भर रहा है और जिसको बाबा कहते हैं पाप की गठड़ी बड़ी होती जा रही है और जिसको बाबा कहते हैं डे बाई डे कला काया चट होती जा रही है। तो इतना कर्म करते हैं लोग फिर भी कला काया चट हो रही, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि कर्म के हिसाब से व्यक्ति बहुत व्यस्त है लेकिन किसी भी कर्म में धर्म का अंश नहीं। तो डे बाय डे जो कला है वो बिल्कुल चट हो गई है। अब बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया कि आप बच्चों को उठते ही हर कर्म को धर्मयुक्त बनाना है। हमारी जितनी भी मुरलियां बाबा ने हम बच्चों के सामने चलाई हैं, हर एक मुरली में बाबा ने कर्म को धर्म से कैसे जोड़ा जाए वो सीख दी और उसी कर्म को परफेक्ट कर्म कहते हैं और उसी कर्म को करते करते अपन परफेक्ट बनेंगे और उस कर्म को करते करते भी हम योग युक्त रहते हैं, उस कर्म को करते करते भी हमें बोझ नहीं महसूस होता, हल्कापन होता और उस कर्म को करते करते हमारा कितना खाता जमा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई घर बार छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप कर्म करते करते ही नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बन सकते हो, कर्म करते करते ही देवत्व आ सकता है। तो बाबा ने वो कर्म की विधि हमें क्या सिखाई। अब जैसे बाबा ने कहा बच्चे उठते ही अपने जो उठना है, दुनिया में भी लोग उठते हैं लेकिन उनका उठना कैसा होता है, दुनिया में लोग बेशक उठते ही किसी को गुड मॉर्निंग भी करते होंगे, आजकल तो आपको पता है गुड मॉर्निंग में से गुड शब्द निकल गया है, आजकल केवल मॉर्निंग रह गया है, लोग उठते ही ऑफिस में स्कूल्स में मॉर्निंग सर वो गुड निकल गया। अब जब मॉर्निंग गुड ही नहीं रही तो गुड को जोड़ने की जरूरत भी नहीं रही, अब केवल मॉर्निंग बाकी रह गई है। अब केवल मॉर्निंग कहने से उन्हें मिलता क्या है, पहले गुड शब्द तो था कम से कम कुछ अच्छा तो याद आता था। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, उठते ही उठने के साथ धर्म को जोड़ो। अब उठते ही धर्म कैसे जुड़ेगा, बाबा ने कहा पहले जब उठते थे तो देह के विमान में उठते थे, अब उठते ही क्या याद आता है, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। तो ये जो संकल्प है ये धर्म युक्त संकल्प है, ज्ञान युक्त संकल्प है, नम्रता युक्त संकल्प है, इसमें अभिमान है ही नहीं। मैं नहीं तो उठते ही व्यक्ति को मैं घर का मुखिया हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, उठते ही रिलैक्स तो होता ही नहीं है लेकिन उठते ही फिर वही संकल्पों का जाल शुरू हो जाता है और उसके साथ फिर कई तरह की बातें आती हैं, कहीं ईगो आता है, कहीं ईर्ष्या आती है, कहीं जल्दबाजी आती है, कहीं तनाव आता है। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा उठते ही मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। और बाबा ने कहा जैसे अमृत वेला आदि काल है, तो जब सृष्टि का आदि काल था तो आत्मा ब्रह्मलोक से धरती पर आई थी, तो अमृत वेला भी आदि काल है, तो आप ऐसे ही महसूस करो कि मैं ब्राह्मण आत्मा अभी अभी उतरी हूँ और अभी अभी मुझे बाबा से मिलन मनाना है। तो पहला संकल्प बाबा से गुड मॉर्निंग और उसके बाद फिर हर संकल्प हमारा ज्ञान युक्त धर्म युक्त होता है, बाबा से मिलन मनाते हैं, बाबा के गुण गाते हैं, अपने धर्म को स्मरण करते हैं, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, तो उठते ही अपने धर्म में स्थित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा आपका तो उठना भी धर्म युक्त है। उसके बाद बाबा ने कहा दूसरा कर्म, इस देह को सजाते हो संवारते हो तो उसमें भी दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, बहुत अमीर लोग हैं तो बहुत खर्चा करते हैं देह को सजाने संवारने में, टाइम भी लगाते हैं और देह अभिमान के साथ शरीर को सजाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चों का संकल्प धर्म युक्त होता है, उठते ही आपके कर्म के साथ धर्म मिल गया तो आप क्या कहते हो कि भाई ये जो शरीर है ये मंदिर है और इस मंदिर के अंदर बाप दादा की अति प्रिय मूर्ति विराजमान है, तो मैं खुद मूर्ति भी हूँ और मंदिर का ट्रस्टी भी हूँ, तो ट्रस्टी बन करके इस मंदिर को सजा रहा हूँ, सुंदर बना रहा हूँ, इसको धो रहा हूँ। तो ये देखिए कर्म के साथ धर्म का कितना सुंदर मेल हो गया। अब ये कर्म करते हुए भी आप कितने सिंपल कितने साधारण हो, सादगी भी है लेकिन विचार बहुत ऊंचे। फिर बाबा ने कहा जैसे लौकिक दुनिया में लोग स्कूल कॉलेजेज में जाते हैं, अब वहां भी केवल कर्म है धर्म नहीं है, तो वहां भी आपने देखा होगा बच्चे कैसे जाते हैं, कोई रास्ते में लड़ते झगड़ते जाते हैं, कोई घर से ही रूठ के जाते हैं, कोई पैसे पे रूठा है, कोई कपड़े पे रूठा है, किसी को टीचर से नाराजगी है, किसी को पेरेंट्स से नाराजगी है, किसी को पढ़ाई का टेंशन है, और कोई तो केवल टाइम पास करने जाता है, कोई वहां जाके तोड़फोड़ करता है, ना टीचर का रिस्पेक्ट है, ना कोई जीवन का लक्ष्य है, ना कोई उस पढ़ाई से प्राप्ति का उमंग है, और देह अभिमान तो इतना है। आजकल तो जो स्कूल कॉलेज हैं वो भी ऐसे लगता है कि लोग सैर सपाटे पे जा रही हैं, कहीं पढ़ने जा ही नहीं रही। लेकिन बाबा ने कहा आप बच्चे इस मंदिर को सजाने के बाद पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई कितनी सिंपल और आपको पढ़ने का कितना उमंग और आप कितना डिसिप्लिन में पढ़ते हो। बेशक पट पे बैठते हो, बेशक ये पट वाली यूनिवर्सिटी है, पढ़ाने वाला कितना ऊंचे से ऊंचा है और एक एक लाइन में जीवन का कितना ऊंचा लक्ष्य है, तो आप पढ़ते पढ़ते कितने आनंदित होते हो कि पढ़ाई इतनी सिंपल लेकिन लक्ष्य के ऊपर भी एकाग्र हो, प्राप्ति भी आपको दिखाई देती है, पढ़ाने वाले से भी आपका बहुत प्यार है, डिसिप्लिन है, कम खर्च वाला नशीन भी हो, ना कोई फीस है, ना कोई कॉपी किताब है, ना कोई बंधन है। तो बाबा ने कहा देखो आपका पढ़ना भी धर्मयुक्त है, लेकिन उनके पढ़ने में तो दिखावा अधिक है, टेंशन अधिक है और प्राप्ति कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत अल्पकाल की है। फिर बाबा ने कहा जैसे आप कर्म करते हो, कर्म क्षेत्र पर आते हो, तो हरेक का अपना अपना कर्म है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई घर में माताएं बहनें कर्म करती हैं, अब वहां भी लोग कर्म करते हैं, लेकिन आप देखते हो कि आपका जो कर्म है, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे के हर कदम में पद्मों की कमाई है, आपका एक एक बोल हीरे तुल्य है। और बाबा ने ये भी कहा है कि जहां मेरा बच्चा है वहां मानो उस योगी बच्चे के स्वरूप में मैं ही मौजूद हूं। तो हम कैसे कर्म करते हैं? अब हम गए, घर में गए, मुरली सुनकर के कर्म में आए, तो कई तरह के कर्म होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति उधार मांगने आ गया तो हम क्या करेंगे? कोई व्यक्ति उलाहना देने आ गया, आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, हम क्या करेंगे? किसी ने हमें ही कह दिया कि आप तो वहां क्लास में जाके बैठ जाते हो और मेरा तो आज इंटरव्यू था, मुझे तो नाश्ता जल्दी चाहिए था, आपको दो चार बातें सुना दी, आप क्या करोगे? कर्म में तो ये सारी बातें आएंगी, लेकिन बाबा ने हमको कहा है कि हर बात का सामना किसके साथ करना है? धर्म के साथ, धर्म को नहीं छोड़ना। सामने वाला तो जो भी करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, आपको उलाना भी देगा, आपके ऊपर ताने भी मारेगा और आप पे गुस्सा भी करेगा, आप पे इल्जाम भी लगाएगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या है? रामायण में आता है भाई, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। तो अभी हमारा जो धर्म है उसकी परीक्षा है, हमारा धर्म क्या है? हम अपने गुणों को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी शांति को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने प्रेम को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी शुभ भावना को नहीं छोड़ेंगे। काम तो खूब है, वो तो करना ही। एक बार मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे जब आप इतने व्यस्त हो काम में, इतने अधिक व्यस्त हो कि आपको पानी पीने की भी फुर्सत नहीं, उस समय आप अशरीरी होकर के दिखाना। अगर उस समय आप अशरीरी हो गए तो आप अंतिम पेपर में पास हो सकते हो। अब देखिए, पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है, प्यास लगी हुई है, पर लगता है कि नहीं, हाथ वाला काम पूरा करके ही पानी पिएंगे, और उस समय अशरीरी हो जाए आत्मा। तो बाबा ने कहा था खुद ही अपनी परीक्षा लेकर के देखो, तो जब अंतिम समय आएगा तब भी तो आपके इसी धर्म की परीक्षा होगी ना। चारों तरफ हल्ला है लेकिन आप एकाग्र हैं, चारों तरफ खूने नाई खेल है पर आप निर्भय हैं, चारों तरफ रास्ते बंद है लेकिन आप अपने विश्वास में निश्चय में अडिग गए, तो वो धर्म की परीक्षा होगी उस समय। तो उस समय से पहले हम रोज ये परीक्षा दे दे के परिपक्व हो जाए। कहते हैं फाइनल परीक्षा से पहले, बच्चों की हर महीने परीक्षा होती है, उसके नंबर जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल बार बार परीक्षा लेते, तो हमारी भी रोज परीक्षा होती। अब किसी ने कहा तुमने नाश्ता नहीं बनाया, मेरे को तो जल्दी है जाना था, तुम ये नहीं करती, अब हम क्या करें, हमको बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा बच्चे किसी की बात सुनकर के अपनी शुभ भावना नहीं छोड़नी, शांति नहीं छोड़नी, प्रेम भी नहीं छोड़ना। तो हम प्रेम से कहेंगे कोई बात नहीं, अभी सारी तैयारी हुई पड़ी है, एक मिनट में काम हो जाएगा। हम शांति से जवाब देंगे, अंदर में शुभ भावना रखेंगे, बाबा इसको भी शांत रखो, इसको भी सद्बुद्धि दो, इस आत्मा को भी तसल्ली दो, एक मिनट में ये सारा काम हुआ ही पड़ा है। हम उसको भी कहेंगे कि तुम तब तक ये काम करो या ये चीज खाओ, तब तक अपना बैग सेट करो या अपना स्कूटर निकालो, तब तक आपको ये थाली टेबल पे आती है। मतलब जब हम कर्म में आएंगे तब बहुत कुछ हमारे सामने आएगा। अगर हमने इस तरह से कर्म किया तो वो कैसा कर्म हो गया, धर्म सम्मिलित है, उसके नंबर लगाएगा बाबा। भाई कर्म करते भी धर्म का ध्यान है, धारणा का ध्यान है, लेकिन हमें भी गुस्सा आ गया, तुमको तो रोज ही जल्दी लगी पड़ी रहती है, तुमको तो मेरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बच्चों को कहेंगे तुम तो तुम्हारे लिए इतना किया, तुम इतना नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, जैसे वो थे हम भी वैसे ही बन गए, तो हमारे नंबर कट गए। नंबर कर्म के नहीं मिलते, कितना भी हम कर्म करें, लेकिन नंबर मिलते हैं कर्म के साथ जब हम गुणों को जोड़ते हैं। अब दिन भर में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, अचानक कोई मेहमान आ जाता है, अचानक कोई प्रकृति का पेपर आ जाता है, अचानक कोई बीमार हो जाता है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो क्या उस समय हमको याद रहता है कि मेरे को इस कर्म को धर्म के साथ निपटाना है। अचानक 8-10 काम इकट्ठे हो जाते हैं, एक वो कहता है एक वो कहता है, क्या उस समय संतुलन रहता है, धैर्य रहता है, नम्रता रहती है? क्या मैं उस समय अपने को समझाती हूँ कि ये काम कल पहले भी हुए थे, अब भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, पहले जो सबसे जरूरी है मैं वो करती हूँ बाबा की याद में, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला, क्या ये याद रहता है? बाबा ने कहा था ऑफिस में भी जब आप काम करते हो तो आपके सामने कितनी चीजें होती हैं, सबसे पहले होता है कि आपके हाथ में कलम होता है। तो बाबा ने कहा था क्या आप कलम चलाते समय याद रखते हो कि मुझे कमल पुष्प समान बनकर कलम चलाना है? फिर बाबा ने कहा कि आपके ऑफिस में आपके सामने एक फाइल होती है, तो जब आप फाइल में कुछ लिखते हो तब आपको याद रहता है कि बाबा मेरी फाइल में क्या लिख रहा है, इस वक्त जमा हो रहा है कि घटा हो रहा है? तो अगर हम कर्म करते हुए बाबा की इन शिक्षाओं को फॉलो करेंगे तो हमारा वो कर्म कैसा बनेगा, हमें कितने सारे नंबर मिलेंगे। लेकिन हम रिवाजी तरीके से कलम चला रहे हैं, रिवाजी तरीके से जल्दी जल्दी जाऊं, जल्दी जल्दी निपटाऊं, जल्दी जल्दी काम निपटे फिर मैं जाऊं, कहां जाना है भाई हमको? हमारी यात्रा तो चालू है, कर्म करते भी तो यात्रा चालू है ना, या कर्म पूरा करके यात्रा करनी है? हमारा तो कर्म योग है। तो अगर हम कर्म करते भी योग लगा रहे हैं तो हमारा खाता जमा हो रहा है, और हमको लगता है नहीं कर्म जैसे तैसे जल्दी से निपटाऊं फिर जा करके योग करूं, तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि जब हम कर्म निपटा रहे थे तब तो योग याद आ रहा था, और जब योग में बैठेंगे तो वही किया हुआ कर्म याद आएगा। तो दोनों ही तरफ से हमको घाटा हो गया, न कर्म ठीक से हुआ और न योग ठीक से लगा, लेकिन कर्म करते हुए ही योग युक्त रहना है। और इसी तरह से व्यवहार में, संसार के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, मान लीजिए हम कोई दुकान वाले हैं, जैसे किसी ने बताया था कि भाई मैं एक दुकान में सामान बेचता हूँ, तो मैंने दो प्रकार के आटे रखे हुए हैं, एक आटा मिलावट वाला है और एक आटा बढ़िया है। तो जब मेरी जाति का कोई व्यक्ति आता है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं बढ़िया वाला आटा तोलता हूँ, और जब कोई दूसरी अनजान व्यक्ति ग्राहक आता है तो मैं मिलावट वाला आटा उसे दे देता हूँ। अब कर्म तो वो कर रहा है, लेकिन धर्म को छोड़ करके कर्म कर रहा, इससे उसे क्या मिलेगा? मिलावट वाले आटे से मान लीजिए उसको 150 रुपए बच भी गए, लेकिन कहते हैं जैसा पैसा होता है वैसा ही रिटर्न आता है। अब उस पैसे से वो घर के बच्चों की पालना करेगा तो या तो बच्चे बीमार पड़ेंगे या बच्चे फिजूल खर्ची करेंगे, जिसका काम 2000 वाले मोबाइल से चल सकता था वो 3000 वाला ले लेगा, तो वो मिलावट वाला पैसा मोबाइल में चला गया। या कोई बीमार हो जाएगा, उसकी दवा पानी आ जाएगी, वो मिलावट से कमाया गया पैसा बीमारी में चला जाएगा। या कोई दुर्घटना घट गई, कोई चोरी हो गई, कोई चीज टूट गई, कहीं पैसे रख करके भूल गए, या कोई उधार लेकर के वापस नहीं लौटा रहा है, या अचानक कोई यूं ही खर्चा आ गया उसमें वो पैसे चले गए। तो धन अपने साथ अपने संस्कार भी लेके आता है और वो उसी प्रकार के कर्मों में चला जाता है, लेकिन उसका तो क्या बन गया? धर्म तो नहीं बना, कर्म धर्म युक्त तो नहीं हुआ। अब क्योंकि वो देह देख रहा है, देह दृष्टि से कर्म कर रहा है, एक मेरा है एक पराया है, एक खा के बीमार हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला बीमार नहीं होना चाहिए। तो कहती हैं सबको आत्म दृष्टि से देखो, आत्मा समझो, तो धर्म तो है नहीं कर्म, अकेले कर्म का क्या मिलेगा? उसके खाते में कितना जमा होगा? दुकान पे वो 18 घंटे बैठता है, उसके खाते में क्या जमा होगा? कुछ भी जमा नहीं है, खाली आता या दुकान यही रहेगी, सामान यही रहेगा, कमाया हुआ पैसा यही रहेगा, ऊपर जाकर के सजा वो खाएगा मिलावट की, नीचे भी सजा खाएगा क्योंकि वो पैसा गलत काम में लगेगा, ऊपर भी जाके सजा खाए। तो जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं, हम ऑफिसर हैं, अब कोई गरीब व्यक्ति भी आ गया, अमीर व्यक्ति भी आ गया, साइन कराने तो सब आएंगे, पढ़ा लिखा भी आ गया, अनपढ़ भी आ गया, कोई महिला भी आ गई, कोई पुरुष भी आ गया। अब हम देह अभिमान में बैठे हैं अपनी सीट पे, तो किसी का फेवर है, किसी की तरफदारी है, किसी को इग्नोर करते हैं, किसी का काम जल्दी करते हैं, किसी से बहुत वेट करवाते हैं, किसी का काम प्रसन्न चित्त होके करते हैं, किसी को आंख दिखा के काम करते हैं, क्योंकि कोई हमें अच्छा लगता है कोई हमें अच्छा नहीं लगता है। तो कर्म तो हमने किया, हम अपनी सीट पे भी बैठे हैं, तनख्वाह भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं काटेगी, लेकिन कर्म का जो फाइनल फल है, भगवान के घर में मेरे क्या नंबर लगेंगे? मेरे कर्म में तो तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष भेदभाव पक्षपात, ये बहुत सारी चीजें। तो कर्म तो मैं करता हूं लेकिन उसमें धर्म तो जीरो है, तो क्या बनेगा? बेशक नौकरी के 30 साल गए 32 साल गए, क्या कमाई हुई? पैसा तो कमाया लेकिन भविष्य के लिए। अब जरूरी नहीं कि ये व्यक्ति अगले जन्म में जाकर के भी पढ़ लिख करके अच्छा पद पा ले, क्योंकि पुण्य का खाता अभी तक तो है नहीं, ऊंच नीच सब कुछ। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम ना अभी तो नौकरी कर रहे हैं, अभी तो हम काम धंधा कर रहे हैं, फिर जब सेवा से निवृत्त हो जाएंगे ना तब जाकर के हम आपका ज्ञान सीख लेंगे, आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कहते हुए। अब जब वो 60 साल का हो गया, रिटायर हो गया, अब खटिया पे बैठ करके ज्ञान सीखेगा, अब क्या फायदा? गरीब अमीर का भेद, तेरे मेरे का भेद, अपने पराये का भेद, वो तो सारा उसने कर लिया, अब क्या करेगा ज्ञान सीख के? तो बाबा ने हमें कहा कि चाहे कोई भी है, किसी भी क्षेत्र में है, छोटा है बड़ा है, लेकिन कर्म करते हुए अपने मूल्यों को हमेशा बना करके रखो। आप सफर कर रहे हो, वहां भी आपको मूल्यों की जरूरत। कोई बाजू में आके बैठ गया, नहीं तुम मेरी बाजू में मत बैठो, कोई भी कारण से हम उसको लाइक डिसलाइक करती, वो तो कहेगा कि भाई, कई लोग तो बोल भी देते हैं कि अरे तुम भी ऐसा कहते हो, क्यों मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं? अब वहां भी हमारे धर्म को लोग देखते हैं, हम खाना खाते हैं तो भी लोग हमारे धर्म की चेकिंग करते हैं, ये खाना हमारी तरह खा रहा है कि ज्ञानियों की तरह खाना खा रहा है, कैसे खाना खा रहा है? तो हर घड़ी धर्म हमारे साथ है और हर घड़ी हमें साथ रखना है उसको, तब हमारे कर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म होते हैं, तब हमारे कर्म परफेक्ट कर्म है, तब हमारे कर्म यादगार कर्म बनते हैं। और उन कर्मों का लोग एक दूसरे से जाके वर्णन करते हैं कि मैंने अमुक ऐसे व्यक्ति को देखा, ऐसी बहन भाई को देखा, उसका चलना क्या था, उसका खाना क्या था, उसका व्यवहार क्या था, बड़ा मिठास थी, बड़ी नम्रता थी, बड़ा प्यार था, बहुत सारी बातों का फिर वो जा करके वर्णन करते हैं। कोई ने हमारी शिकायत कर दी या कोई भी कुछ भी हुआ तो उस समय हमने धैर्य खो दिया, हम भी तूतू मेमे में लग गए, अपने को सिद्ध करने में लग गए, या मेरे को बाबा का वो धर्मयुक्त वाक्य याद है, ज्ञानयुक्त वाक्य याद है कि बच्चे जो कंप्लेन करता है वो कंप्लीट नहीं बनता, जिद्दी कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, कलंक लगने वाले कलंगी धर बनते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया तो आपको धीरज नहीं खोना है, धैर्य रखना है, सामना नहीं करना है, समय के पास सत्य को सिद्ध करने की अपनी युक्तियां हैं, थोड़ा धैर्य रखो, सत्य सामने आ जाएगा। क्या वो सारी बातें मुझे याद रही या मैंने उसी क्षण उलट वार कर दिया, उसने मेरे पे वार किया, मैंने उस पे उल्टा वार कर दिया, तो धर्म तो रहा नहीं, कर्म बन गए। मैं एक बार एक स्कूल में गई थी तो वहां बच्चों को मैंने कुछ ज्ञान की बातें सुनाई और फिर कुछ सवाल पूछे, तो एक बच्ची आगे आगे बैठी थी, उसने जवाब दिया पर जवाब गलत था, हमने उसको बिठा दिया, और फिर एक छोटी कन्या पीछे बैठी थी, उसने जवाब बहुत बढ़िया दिया, तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने ताली बजाई, हमने भी कहा अरे बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है, ऐसे कह के उसको बिठाया। तो मैंने सोचा मैडम को तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन मैडम का तो मुंह ही उतर गया, तो मेरे को तो समझ में नहीं आया कि मैडम को क्या प्रॉब्लम हुई। चलो फिर क्लास पूरा हुआ तो मैडम हमको ले गई ऑफिस में, और जब मैं ऑफिस में गई तो वो आगे जो लड़की बैठी थी वो ऑफिस में पहले से खड़ी थी, तो मैडम कहती है बहन जी ये ना मेरी बेटी है, इसको आप जरा आशीर्वाद दीजिए। तो मुझे मामला समझ में आया, तो मेरे मन में आया कि जो पीछे इतनी इंटेलिजेंट बच्ची बैठी थी वो भी तो मैडम की बेटी ही थी, स्कूल में तो जितने भी बच्चे होते हैं मैडम के ही बच्चे होते हैं, तो मैडम को तो खुशी होनी चाहिए थी कि मेरी क्लास का एक बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। लेकिन मेरे मन में आया कि टीचर रूप थोड़ा डाउन है और माँ वाला रूप थोड़ा ऊपर है, स्कूल में आके भी स्कूल में तो समदृष्टि होनी चाहिए। फिर मेरे को एक पौराणिक घटना याद आई महाभारत की। महाभारत में आता है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने बच्चों की परीक्षा ली जिसमें कौरव भी थे पांडव भी थे और उसका अपना बेटा अश्वत्थामा भी था। तो परीक्षा में अर्जुन सबसे आगे निकल गया निशाना लगाने में, तो सारे बच्चों ने उसकी महिमा की, द्रोणाचार्य ने भी बहुत महिमा की, तो अश्वत्थामा का मुंह उतर गया, उदास हो गया, ईर्ष्या हो गई। तो गुरु द्रोणाचार्य उसे एक तरफ लेकर के गए और उसको कहा, देखो तुम मेरे पुत्र हो और पुत्र के रूप में मेरी सारी संपत्ति के हकदार केवल तुम एक हो, इकलौते हो, उसका कोई बंटवारा नहीं, लेकिन यहां मैं गुरु हूं और गुरु के नाते ये जितने भी बच्चे हैं सारे मेरे शिष्य हैं और इनमें से जो सबसे नंबर वन शिष्य है वो अर्जुन है। तो जैसे पुत्र रूप में तुम मेरे उत्तराधिकारी हो तो शिष्य रूप में सबसे नंबर वन उत्तराधिकारी मेरा अर्जुन। तुम अर्जुन से ईर्ष्या क्यों करते हो? पुत्र के रूप में सारा तेरे को मिलेगा और शिष्य के रूप में मेरा सारा अर्जुन को मिल रहा। अर्जुन तुम्हारा तो ले नहीं रहा कुछ भी, इसलिए तुम अर्जुन से ईर्ष्या मत करो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों रूपों के साथ न्याय किया, पिता के रूप में भी और गुरु के रूप में भी। तो ये न्याय कब हो सकता है? जब व्यक्ति का आत्मिक दृष्टिकोण हो, क्योंकि उसके तो रोल अलग अलग है, एक व्यक्ति एक ही रोल तो प्ले नहीं करता। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पुत्र मोह तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो स्कूल में शिष्य के प्रति कर्तव्य प्रायण नहीं है, ठीक से पढ़ाता नहीं है, ड्यूटी नहीं करता है, सिलेबस पूरा नहीं करवाता है, टाइम पे क्लास में नहीं जाता है, तो एक पलड़ा तो बहुत भारी है, लेकिन दूसरा पलड़ा और फिर तनख्वाह तो वो पूरी लेता है, कर्तव्य नहीं करता है, तो असर तो इसका भी आएगा। बेशक वो ज्ञानी भी है, लेकिन फिर भी अगर वो लेता है तो कर्म तो धर्मयुक्त तो होना ही चाहिए उसका, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो क्या हम कार्य व्यवहार में इन बातों का ध्यान रखते हैं? क्या हर घड़ी धर्म को, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं श्रीमत के पट्टे पे, क्या हम हर घड़ी श्रीमत के पट्टे पे हैं, या केवल सुबह उठे मुरली सुनी इतनी देर तक हमको याद रहता है? वो वास्तव में कर्म का पीरियड ही नहीं, वो तो अपने अंदर भरने का पीरियड है। अब जैसे कोई प्रशिक्षण ले रहा है और प्रशिक्षण लेने के बाद परीक्षा आती है, तो सुबह वाला जो 8 बजे तक का टाइम है वो तो प्रशिक्षण लेने का टाइम, उसमें तो परीक्षा हो ही नहीं रही, अभी टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन परीक्षा की शुरुआत तब होती है जब हम कर्म में जाते और उस कर्म के समय हमारे अंदर गुणों की कितनी धारणा है, वो है बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा के ज्ञान की प्रत्यक्षता। क्या उस समय हम बाकियों की भेंट में निराले कर्म करते हैं? मान लीजिए हम किसी ऑफिस में, मेरा भी ऑफिस है, दूसरे साहब का भी है, तीसरे साहब का भी है। अब मेरा जो ऑफिस है, मेरी जो कुर्सी है जहां मैं बैठता हूं, एकदम साफ सुथरा स्वच्छ, ना जाला है, ना मिट्टी है, ना गंदगी है, बाजू में दूसरे का, तीसरे का, मेरी भेंट में कम है तो लोग आएंगे, महसूस करेंगे, ऑफिस तो सारे एक जैसे है लेकिन ये चमक रहा है। अब अगर हम कहें जी हमको भी वहां जाना है, बैठना है, कौन सा हमारा घर है हमारा, हम तो अपने घर को चमका के रखेंगे, लेकिन 8 घंटे वहां भी तो बैठते हैं, लोग हमसे मिलने आते हैं, पीएम सफाई नहीं करता, गवर्नमेंट के लोग सफाई नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरी बैठने की जगह है मैं उसे साफ सुथरा खुद करूं, बेशक थोड़ा मेहनत करनी पड़े, थोड़ा 2-5 पैसा भी खर्च करना पड़े, लेकिन मेरा कर्म ऐसा हो जो औरों को प्रेरणा दे। तो बाबा ने हम बच्चों को ये संतुलन सिखाया और जैसे कहते हैं कि मनुष्य दो पांव पे दौड़ता है, चलता है, एक पांव पे चलेगा तो थकेगा और दो से चलेगा तो कई मील चलने पे भी नहीं थकता। तो हमारा एक पांव है धर्म और एक पांव है कर्म, हम दोनों को साथ लेके चलते हैं तो जिंदगी बहुत सरल है। हम दौड़ भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, पंछी भी दो पंखों से उड़ता है, कैंची के भी दो फलक होते हैं जिनसे वो कपड़ा काटती है, कागज काटती है, ऐसी जिंदगी के भी ये दोनों पहलू एक साथ चाहिए। धर्म करते समय कर्म भूल जाए नहीं और कर्म करते समय श्रीमत और धारणा भूल जाए नहीं, दोनों वक्त दोनों बातें याद रहे, इकट्ठे रहे, तो हम बहुत तेज गति से उड़ेंगे और अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और इसके लिए हमें बार बार बाबा की शिक्षाएं याद करनी पड़ेंगी, किस कर्म के लिए बाबा ने क्या शिक्षा दिया, देखने के लिए भी बाबा ने कहा। जैसे बाबा ने कहा सारा दिन व्यक्तियों के संपर्क में आते हो, साधनों के संपर्क में आते हो, तो व्यक्तियों के संपर्क में आते हो तो आत्मिक भाव से देखो, भाई बहन भतीजा मामा चाचा आत्मिक भाव से देखो, और साधनों के संपर्क में आते हो तो अनासक्त भाव से देखो। साधन है मकान दुकान गाड़ी मोटर, अनासक्त भाव से देखो, यूज करना है निमित्त मात्र, बाकी फंसना नहीं। तो क्या मेरे को ये दोनों बातें याद रहती हैं? सबसे ज्यादा ये दोनों चीजें 24 घंटे में हमारे सामने आती है, व्यक्ति और साधन। तो क्या मैं हर व्यक्ति को आत्मिक भाव से देखता हूं? देखना एक कर्म है, लेकिन आत्मिक भाव से देखना माना उसमें धर्म ऐड हो गया तो वो परफेक्ट कर्म हो गया। आत्मिक भाव से देखेंगे तो ना काम होगा, ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा, ना मोह होगा। अनासक्त भाव से, आत्मिक भाव से देखेंगे तो शुभ भावना से देखेंगे, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, तो देखो कितना धर्म बीच में आ गए। तो प्यारे बाबा ने हमें बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दी हैं और हर शिक्षा में हमें आगे बढ़ाने का बल है। जैसे खाना है, बाबा ने कहा भोजन सब करते हैं पर आपका जो भोजन करना है वो भी दुनिया से न्यारा है। किस भावना से भोजन करते हैं? हमको देखो ब्रह्मा भोजन मिलता है जिसे देवता भी तरसते हैं और एक एक ग्राही में हम बाबा का शुक्रिया करते हैं और भोजन अनासक्ति से करते हैं। लोग जब भोजन करते हैं तो उनका अटेंशन जीवा पे होता है, बहुत टेस्टी है, लेकिन एक अनासक्त व्यक्ति का अटेंशन पेट पे होता है, लगभग काम पूरा हो गया, बस जीवा की तरफ अटेंशन ही नहीं। एक बार हमने एक आर्टिकल डाला था कि एक बार पेट में और जीवा में झगड़ा हो गया। झगड़ा इसलिए हुआ कि एक मीटिंग थी, मीटिंग तो मीटिंग में सारी कर्मेंद्रियां शामिल थी, जीवा उसकी हेड थी, तो जीवा बहुत बोल रही थी, सारे सुन रहे थे, सब उसको कह रहे थे तुम हमारी बड़ी बहन हो, तुम बहुत अच्छी हो, हम नहीं बोल सकते पर तुम हमारे लिए बोल के हमारा काम करवा देती हो। जैसे सिर ने कहा जब मेरे को ठंडी लगती है तो मैं बोलता नहीं हूं पर तुम बोल के शॉल ले लेती हो, मुझे शॉल की जरूरत है और मेरे को ठंडी नहीं लगती है। जैसे पांव ने कहा मेरा जूता फट जाता है मैं कुछ नहीं बोल सकता लेकिन तुम मेरे लिए जूता ले देती हो बोल करके, तो तुम हमारी बड़ी बहन हो। तो जीवा बहुत खुश हो रही थी, सब मुझे बड़ी बहन बोल रही हैं। इतनी देर में चुपके से पेट ने कह दिया कि तुम हमारी बड़ी बहन तो हो पर तुम कभी कभी ऐसा खा लेती हो, ऐसा खा लेती हो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो जीवा को गुस्सा आ गया, सबके बीच में मेरी इंसल्ट कर दी तूने, तेरी इतनी हिम्मत। तो नाराज हो गई और उसने कहा चल, तू कहता है ना कि मेरे को तकलीफ होती है, मैं तेरे को तकलीफ करके ही दिखाऊंगी। और ऐसे करके उसने पहले तो कई सारे रसगुल्ले खाए, फिर कई सारा समोसे खाए, खूब चटपटे, ऊपर से खूब सारी चाय पी और पेट बेचारा रोता रहा। पर उसने कहा आज तो मैं इसको मजे चखाऊंगी। इसने बोला क्यों सबके बीच में? तो अब आपको पता है, फिर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने कह दिया कि देखो अभी 2-3 दिन कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ ग्लूकोज चढ़ेगा और आप आराम करो। अब जब कुछ खाना ही नहीं है, जब ग्लूकोज चढ़ेगा और शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो जीवा बोलेगी कैसे? तो वो भी चिपक गई, बोलने की ताकत खत्म हो गई। बोलने की ताकत भी तो तभी आती है ना जब ठीक ठाक हो सारे सिस्टम। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ये बेचारी ऐसी चिपकी, हिले ही नहीं, मन ही ना करे। तब जीवा को समझ में आया कि मैं ठीक रखूंगी, रहूंगी तो पेट ठीक रहेगा और पेट ठीक रहेगा तो मैं भी जरा हलचल कर पाऊंगी। फिर उसने माफी मांगी पेट से कि ठीक है, आज के बाद जब भी कोई चीज खाऊंगी तो पहले आपसे पूछा करूंगी कि तुमको ये ठीक लग रही है, खाऊं? तुम इसको खाके ठीक ठाक रहोगे, जलन तो नहीं हो रही है? ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे पूछे बिना कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो राजीनामा हो गया और दोनों ठीक हो गए। तो ये भी एक कर्म है, खाना भी एक कर्म है, देखना भी एक कर्म है, सुनना भी एक कर्म है। तो क्या हम कानों के अधीन हो जाते हैं या सुनते समय श्रीमत याद रहती है, खाते समय भी श्रीमत याद रहती है, या उस समय खाने के अधीन हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है? देखते समय श्रीमत याद रहती है, धर्म याद रहता है, या आंखों के अधीन हो जाते हैं, अच्छा लग रहा है देखते जाओ, अच्छा लग रहा है देखते जाओ, और जैसे ही संतुलन बिगड़ेगा वैसे ही कर्म बंधन बंधेगा, वैसे ही शांति खत्म होगी, वैसे ही मन के अंदर या तो ग्लानी होगी, पश्चाताप होगा, एकाग्रता नष्ट होगी, मन नहीं लगेगा, योग भी नहीं लगेगा। संतुलन कर्म में बिगड़ेगा और उसका असर योग पे आएगा। इसलिए भाई बहन कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। बहन जी क्यों नहीं लगता? क्योंकि कर्म के साथ धर्म का संतुलन नहीं, इसलिए योग नहीं लगता। क्योंकि वो कर्म आत्मा को पकड़ के बैठ जाता है, उड़ने ही नहीं देता, बाबा के पास जाने ही नहीं देता। लेकिन कर्म के साथ अगर ये धर्म होता तो उस समय भी बाबा साथ रहता और योग में बैठते तो भी बाबा साथ रहता, डबल कमाई होती। और धर्म को छोड़ दिया तो सिंगल कमाई भी नहीं हुई। तो अब हम चार्ट रखेंगे हैं, जब कर्म करेंगे तो उस समय लिखत में ना भी रखें, बुद्धि में रखेंगे। इस समय मैं खाना बना रहा हूं, क्या मेरे अंदर शुभ भावनाएं चल रही हैं? दया भावना है, प्रेम भावना है, पवित्रता की भावना है, नम्रता है, धैर्य है। इस समय मैं बाजार से खरीदारी कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर शुभ भावनाएं हैं, नम्रता है, धैर्य है, मेरी दृष्टि वृत्ति कृति ज्ञान युक्त है? इस समय मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर धर्म युक्त संकल्प है? मैं क्रोध में तो नहीं पढ़ा रहा, झुंझलाहट तो नहीं है, चिड़चिड़ापन तो नहीं है, क्या इस समय इस कर्म के साथ धर्म शामिल है? अगर हम लिख सकते हैं तो चार्ट भी बनाए, नहीं तो बुद्धि में देखें। हर अभी मैं सफर कर रहा हूँ, क्या इस समय धर्म मेरे साथ है? कोई भी कर्म कर रही हैं हम, सारा दिन में सैकड़ों प्रकार के कर्म करते, हर घड़ी अपने से सवाल पूछेंगे कि कहीं कर्म रह गया और धर्म का पल्ला छूट तो नहीं गया, दोनों चीजें पकड़ी मैंने। तो हमारे कर्म परफेक्ट बनेंगे और हमारा योग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।
गगन को बड़ी।